शांति। आज हम सब भाई बहन जो कल शाम को आदरणीय दादी गुलजार जी के अनमोल बोल सुने और प्यारे अव्यक्त बाप दादा के वीडियो को सुना, उन दोनों के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं। आदरणीय गुलजार दादी जी का पहले सुनेंगे तो अगर आप बहुत ध्यान से, क्योंकि एक बार तो आपने उनके मुख अरविंद से सुना, लेकिन अब जो जो लिखत में आया है उसको आप अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे और विचार करेंगे तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का स्मृति आएगी। और वो बात यह है, जैसे आज हम यहां पर संगठित रूप से बैठे हैं, है ना, हजारों की संख्या में आए हुए हैं, तो दादी जी ने संगठन का क्या हमारे संपूर्ण बनने में महत्व है और संगठन कितना खुशी की चीज है, उसको दादी जी ने बहुत ही गहरे ढंग से और अपने अनुभव से हमको बताया। तो इसका एक एक शब्द जो है वो संगठन के बारे में ही है। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो वो अकेलापन मांगता है, उसको संगठन नहीं चाहिए, वो संगठन से अलग होकर एकांत में जाते हैं साधना और तपस्या करने। पर दादी जी ने बताया है कि हमारे बाबा के यज्ञ में संगठन ही बहुत हमारी मदद करता है संपन्न बनने में, उसमें रमणीकता भी रहती है, रौनक भी रहती है, और यज्ञ संगठन के आधार से ही कैसे चलता आया है तो उससे सारी संस्था को भी शक्ति मिली है और हम सबको भी। अब एक एक शब्द आप सुनना। दादी जी कह रहे हैं, आज का दिन कितना प्यारा है जो मीठे बाबा की स्मृति दिला रहा है, क्योंकि कल का संगठन तो था ही बाबा मिलन का। भिन्न भिन्न समय के दिन, मिलन के दिन, महावाक्य सुनने के दिन, ये सब आपको स्मृति दिलाने के लिए हैं, क्योंकि इतने समय के बाद तो भूल भी जाता है जो पीछे हुआ था। मान लो पिछली अव्यक्त वाणी आपने सुनी बाबा से और जब नेक्स्ट सुनते हैं तो पिछले का तो भूल जाता है ना, अंदर ही रहता है। तो भूल भी जाता है, लेकिन बुद्धि में, स्मृति में तो है कि हमको ये वरदान मिले हुए हैं। भले शब्द बाई शब्द तो भूल जाता है, लेकिन जो हमने पिछली अव्यक्त वाणियों में सुना, जो बाबा ने वरदानी बोल बोले, बुद्धि में तो रहते हैं ना, तो उसी बुद्धि में रहे हुए को पुनः स्मृति दिलाने के लिए दादी जी कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न समय के दिन, मिलन के दिन, महावाक्य सुनने के दिन, ये स्मृति दिलाने के लिए हैं। तो ये जो वरदान है ये समय पर बहुत काम में आते हैं। अगर हमें याद रहे कि बाबा ने हमें कितने वरदान दिए हैं, वरदान तो रोज मुरली में आते हैं, अगर समय पर वो वरदान याद आ जाए तो बहुत काम में आता है। ये सबका अनुभव है। कोई समय ऐसा आता है जब अपने को अकेला समझते हैं। ज्ञान मार्ग में चलते चलते हर एक को जब इंडिविजुअल होते हैं, कोई समय आता है जब अपने को अकेला समझते हैं। कोई साथी साकार में नजर नहीं आता है। आप देखिए, मान लो आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या एडमिट हैं, तो उस समय आपको क्या दिखता है? डॉक्टर किसी को अंदर भी नहीं आने देता, उस समय तो आप अकेला फील करते हैं ना। ऐसे जिंदगी में बहुत समय ऐसे आते हैं जब आपको साकार में कोई दिखता नहीं है साथी। अब दादी जी कह रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा समय बीता है, इतना सारा समय बीता, किसी को ज्ञान में 5 वर्ष हुए हैं, किसी को 50 वर्ष हुए हैं, तो ये कैसे बीता? ये समय जो बीता है, ये बीता है संगठन की शक्ति से, कि बीच बीच में हमारे संगठन होते रहे। संगठन हमको बहुत प्यार से और स्नेह से लेकर चल रहा है, जिसको यात्रा कहते हैं। तो यात्रा में भी, दुनिया में भी लोग जाते हैं तो संगठित होकर के टोली बना के जाते हैं ना। हरिद्वार जाएंगे, सियाराम सियाराम सियाराम, हरे हरे, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो संगठन में खुशी खुशी चलते हैं। तो अगर हर ब्राह्मण देखेगा कि हम यहाँ तक कैसे आए, तो आप देखेंगे ये बाबा के बनाए हुए संगठन का कमाल है कि वो हमको यहाँ तक ले आया है। तो संगठन हमको बहुत प्यार से, स्नेह से लेके चल रहा है। अकेला भी चलते हैं, लेकिन संगठन की मदद अभी बहुत जरूरी है। जब संगठन की बात आती है तो सबके चेहरे ही बदल जाते हैं। आप जहां मधुवन में पधारते हो, शांति वन में पधारते हो, उसके बाद जब आप शाम को संगठित सभा में आते हो तो आपका चेहरा बदल जाता है कि नहीं? रौनक देखकर ही रौनक आ जाती है, एक दूसरे को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सारे एक बाप की याद में संगठन में आए हैं। तो चेहरे बदल जाते हैं। वैसे तो हमारे अंदर सबकी याद है और सबके अंदर हमारी याद है। क्या गुलजार बहन जी जब यहाँ नहीं आए थे, बॉम्बे में थे, तो क्या हमको उनकी याद नहीं थी? थी। और उनको भी अपने परिवार की याद थी। तो वो बता रहे हैं कि साकार में मिलने से क्या होता है। सबके अंदर हमारी याद है, हम अकेले नहीं चलते हैं, संगठन में चलते हैं। आप भले अपने सेंटर पर होंगे तो आपको मधुबन तो याद होगा, कि वहाँ पर दादी कॉटेज है, दादी जानकी जी हैं, दादी रतन मोहिनी जी हैं, दादी गुलजार, तो संगठन वो याद स्मृति से हम चलते हैं ना। अच्छा, तो संगठन में चलते हैं, संगठन हमको अपना बना के मिला के चला रहा है, ये ठीक है? सबको लग रहा है कि संगठन हमको अपना बना के मिला के संगठन चला रहा है और हम संगठन में चल रहे हैं बड़े प्यार से? हाथ उठाइए जरा, क्योंकि अभी तो संगठन में ही बैठे हैं। और संगठन की जो शक्ति है वह भी दिखलाती है कि संगठन कितना प्यारा होता है, चलते फिरते कितना संगठन का फायदा होता है। आप कुछ भी ना करो, संगठन में आ जाओ तो आप देखेंगे आपको पुरुषार्थ का पता ही नहीं लगेगा और एक दूसरे को देखकर आपके अंदर कई धारणाएं हो जाएंगी। इसलिए संगठन का फायदा कितना होता है तो बता रही हैं दादी जी, अब तक हमने क्या किया है, संगठन का लाभ लेते हुए हम संगठित रूप में भिन्न भिन्न तरीके से संगठन को यूज कर रहे हैं। भिन्न भिन्न तरीके का क्या अर्थ हुआ? हमारी क्लास में भी संगठन होता है, हमारे बड़े प्रोग्रामों में भी सेंटर पे संगठन होता है, कोई फंक्शन करते हैं तो भी संगठन होता है, भट्टी करते हैं तो भी संगठन होता है, और आजकल तो आपको पता है भिन्न भिन्न वर्ग हैं, महिला वर्ग का भी संगठन होता है, डॉक्टर वर्ग, तो संगठन को हम भिन्न भिन्न तरीके से यूज कर रहे हैं। एक बीके का डॉक्टर किसी डॉक्टर से मिलने जाए और डॉक्टर विंग बना के आप डॉक्टर को बुलाएं, फर्क पड़ जाता नहीं? तो इसलिए दादी जी कह रही हैं कि संगठन का लाभ लेते हुए हम संगठित रूप में भिन्न भिन्न तरीके से संगठन को यूज कर रहे हैं, भोजन भी इकट्ठे खा रहे हैं, कहाँ भी कुछ होता है तो चाहे अकेले चाहे संगठन में, किसी भी रीति से जब साथ में संगठन में होते हैं तो कितना प्यारा समय बीतता है। आते तो हम अकेले ही हैं लेकिन जब संगठन में मिल जाते हैं तो कितना खुशी का समय बीतता है, और कितना आपस में आपस का लव स्मृति में आता है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम रूहानी भाई बहन हैं, किसी को सेवा का टर्न आता है, दो जोन को सेवा का टर्न आता है तो सारा खुशी रहती है ना। इसलिए बहुत अच्छा है जो आज के दिन हम आपस में तो मिलते हैं, आज के दिन यानी कल आपस में तो मिलते हैं, लेकिन आपस में मिलने का आधार है हमारा बाबा। हम कल क्यों आए मिलने के लिए? आपस में तो मिले लेकिन बाबा का दिन था इसीलिए आए ना, तो आधार तो बाबा हो गया। वैसे भी हम सब का आपस में जो रूहानी संबंध है, ईश्वरी परिवार है, उसका आधार तो बाबा ही है ना। तो बाबा भी बच्चों से दिल से मिलते हैं, अंदर सूक्ष्म बाबा तो मिलते ही रहते हैं, फिर बाहर स्थूल में तो हमारा स्थूल शरीर भी है तो वह भी मिलता है, यानी शरीर साकार में भी मिलते हैं और सूक्ष्म में तो मिलते ही रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हम एक परिवार हैं, लगता है हम एक परिवार हैं। भले आप अपने अपने जोन में चले जाओगे पर सारे विश्व का ब्राह्मण एक परिवार है, वन वर्ल्ड फैमिली है तो सही। तो ऐसा लगता है जैसे हम एक परिवार हैं, तो आपस में मिलने का, बाहर और साथियों से मिलने का, और मूल बात है अपने बड़ों से मिलने का। यहाँ आएंगे तो आपको सीनियर मिलेंगे, तो सीनियरों से मिलने का भी फायदा हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा मिलन मेले का रूप हो जाता है। तो हमारे मेले क्या हैं, ये मिलन के ही मेले हैं। अच्छा, सबको बाबा और हमारी मीठी मम्मा की याद है, यही तो हमारे मुख्य आधार हैं, साथी हैं। वह साथ बहुत अच्छा है, हम सब के दिल में प्यार है उनके लिए, जो बाहर भी मिलन मेले के रूप में दिखाई देता है, जो दिल में होगा बाहर दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। तो आपने दादी जी के मधुर वाक्य सुने। सब में टोटल अब तक यज्ञ कैसे बढ़ता आया है, हम कैसे आगे आते जाए हैं, उसमें संगठन का जो बल है, संगठन का जो रोल है, वो दादी जी ने बताया। अब हम जो कल हमने अव्यक्त मुरली को दादी जी द्वारा ही बाबा ने सुनाई है, वीडियो में सुना, तो वो मुरली थी 31 अक्टूबर 2007 की। तो इसको हम अब फिर से मंथन करते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मेरे सभी बच्चे विशेष हैं, इसलिए हमको गौर से सुनना चाहिए। कैसे विशेष हैं वो बाबा ने हमको रिवाइज कराया। हर एक बच्चे का समान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। तो आपको नशा चढ़ता है कि विश्व में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं, लेकिन हर एक बच्चे का समान इतना विशेष है, क्योंकि भगवान के बच्चे बने हैं, जो विश्व में किसी आत्मा का नहीं है। अगर हर वक्त याद रहे तो कैसे आपकी चाल होगी, कैसे आपका नशा होगा। आप सभी विश्व की आत्माओं के, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो ब्रह्मा बाबा सबका पूर्वज है। सारे लोग मानते हैं कि सृष्टि की आद जो हुई थी वो ब्रह्मा बाबा ने की थी। मुस्लिम लोग आदम बाबा कहते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, और उसके साथ वाले जो हैं हम लोग, तो अगर आदम बाबा पूर्वज है तो हम भी पूर्वज हो गए कि नहीं हो गए, और पूज्य भी हैं, क्योंकि पूर्वजों की ही बाबा ऐसे बनाता है जो पूजा होती है बाद में। फिर बाबा कहते हैं सारे सृष्टि वृक्ष की जड़ में आप आधार मुहूर्त है। जड़ में तो आधार रहता है ना, जिसके ऊपर सारा वृक्ष खड़ा है। और कारण क्या है, सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना है। अब हम बाबा के बच्चे बाबा की डायरेक्ट और प्रथम रचना है। आप सोचिए, भगवान ने हमको ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचा, तो कितनी पावरफुल रचना होगी। देखने में तो आप साधारण लगते हो। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को देखकर खुश होते हैं। अब बाबा ने हर बच्चे की विशेषता बताई है जो दुनिया में है नहीं, और बच्चों की विशेषता को भिन्न भिन्न तरीके से चार पांच श्रेणी में बांट के बताया है। आप भी किसी ना किसी श्रेणी में तो आएंगे ही, तो सुनिए। चाहे छोटा बच्चा है आयु में, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब आप देखना, या तो आप प्रवृत्ति वाले होंगे, या माताएं होंगे, या छोटे बच्चे होंगे, तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि सारी दुनिया एक तरफ और आप पूर्वज आदि रचना आधार मुहूर्त एक तरफ। अब सुनिए, आजकल कितने भी बड़े बड़े साइंसदान हैं, आज की दुनिया साइंस को बहुत मानती है, तो बाबा कहता उनमें भी बड़े से बड़े साइंसदान दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत हो बने और चंद्रमा तक जा पहुंचे हैं तो विशेष, पहले तो कोई चंद्रमा तक गया नहीं। लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सके। चंद्रमा तक पहुंच गए अपनी मशीनों के आधार पर, लेकिन छोटी सी जो मेन चीज है आत्मा ज्योति स्वरूप, उसको नहीं पहचान सके। और यहां छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु जानता है। किसी बच्चे से पूछो बीके से, तुम कौन हो? मैं आत्मा हूं, हाथ लगा के बताएगा आत्मा कहाँ रहती है। किसी साइंसदान से पूछो उसको पता ही नहीं। तो बाबा बता रहा है कि मेरे हर प्रकार के बच्चे कितने विशेष हैं। वो चांद में ढूंढ रहे हैं, यहाँ छोटा बच्चे को पूछो तुम कौन हो? मैं आत्मा हूं, हाथ लगा के बताएगा यहां रहता हूं, और भी बताएगा। फलक से कहते हैं मैं आत्मा हूं। अच्छा, कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, अब बाबा मुकाबला कर रहा है। बड़े बड़े कुंभ में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, इलाहाबाद में चले जाओ, कहीं भी बड़े बड़े महात्मा हैं, क्या उनका भवका होता है? अच्छा, माताएं फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया। यहां जो माताएं बैठी हैं और जो फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया, वो जरा हाथ उठाओ तो माताएं। देखो, दुनिया में लगेगा साधारण माताएं हैं, लेकिन कहती क्या है? हमने परमात्मा को पा लिया। पा लिया है ना, बाबा कह रहे हैं। और महात्माएं क्या कहते हैं? परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है, जन्म जन्म से कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा के बच्चे विशेष हुए या वो हुए? तो सारे महात्माओं को एक तरफ रख लो, बाबा की माताओं को एक तरफ रख लो। अच्छा, आगे चलो, प्रवृत्ति मार्ग वाले। यहां प्रवृत्ति मार्ग वाले युगल कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाइए तो, प्रवृत्ति मार्ग वाले युगल देखो बहुत हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले, प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ में रहते, पवित्र रहते हैं। चैलेंज करते हैं क्योंकि हमारे बीच में बाबा है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, पर धर्म मुश्किल होता है और स्वधर्म सहज होता है। पहले तो हमको ज्ञान नहीं था। अच्छा, और दुनिया के लोग क्या कहते हैं? कि आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हो? बहुत सहज है। तो कौन विशेष हुआ? दुनिया के लोग हुए तब बाबा के बच्चे हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था। ब्रह्मा बाबा ने जब यज्ञ रचा था तो बहुत सारे गीत बनवाए थे, कुछ बनाए भी थे। वो गीत बड़े सार युक्त थे, कोई कोई पुरानी बहनें, अब तो थोड़ी रह गई हैं, वो गाया करती थी। तो एक गीत बाबा सुना रहे हैं, जिन्होंने नहीं सुना है आज सुन लो। तो बाबा कहते हैं, कितने भी सेठ स्वामी हैं, एक तरफ सेठ हो गए, एक तरफ स्वामी लोग हो गए, लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है, तो तुम्हारे सेठ और स्वामी होने का क्या फायदा हुआ? छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया, तो फर्क हो गया। ये सेठ लोग अपने घरों में महात्माओं को बुलाते रहते हैं, भोजन करवाते रहते हैं, प्रबंध करते रहते हैं। स्वामी लोग देखो कितने बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, शिष्य आते हैं, लेकिन एक छोटी सी अलफ को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया और पा भी लिया। एक तो होता है जानना, एक पा के उसके साथ रहना, पालना लेना। इतने निश्चय और फखर से बोलते हो कि असंभव नहीं, संभव है। बाप दादा भी हर बच्चे को विजयी रतन देखकर हर्षित होते हैं कि इतना तो जीत लिया जो दुनिया को पता ही नहीं। क्योंकि हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप है, इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। दुनिया भगवान को सब जगह कह रही है, फिर ढूंढ भी रही है, हैं कब फिर अवतार भी बता रही है। दुख सुख भगवान ही दे रहा है, भटके हुए हैं। और आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। तो फिर बाबा कहते हैं जो असंभव दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। तो फखर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, हम कोई शास्त्र वास्त्र नहीं जानते पर हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण और निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण क्या समझा कि एक तो नशा, हम परमात्मा के बच्चे हैं, और फिर उसका निश्चय चलते फिरते, और फिर परमात्मा के बच्चे होने के कारण परमात्मा तो साथ है ही, बच्चा उंगली छुड़ाएगा भी पिता तो पकड़ेगा। माया से भी बचे हुए हैं। माया तो दुनिया में बहुत है, पर हम कैसे बचे हुए हैं, उसी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। माता पिता बच्चे को बचा के रखेंगे कि नहीं? बाबा कहते हैं जितना मूल्य हुरा होगा उतना ही मैं डब्बी में छुपा के रखता हूं कि माया चोरी ना कर ले। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, बताओ। तो बाबा तो हमारा एक एक सेकंड का ख्याल रखता। अभी 30 अक्टूबर को मेरा अलौकिक बर्थडे था। अच्छा, हम तो बर्थडे मनाते नहीं, पर अनुभव सुनाने के लिए हमारे बर्थडे मनाया गया ORC में। एक बहन भोग लेके गई, उसने मुझे आके कहा कि बाबा ने आपको कहा है कि बाबा बड़ा खुश है, आप यहां तहां जाके बाबा का गीता का भगवान सिद्ध करते रहते हो। ये चलो। दूसरी बात क्या कही कि बच्चे को बर्थडे गिफ्ट क्या दिए दूं मैं? तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे को कहना कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी व्याधि आने वाली थी जो बाबा ने टाल दी है, यही गिफ्ट है। अब बताओ कि कैसे बाबा ऊपर से रक्षा कर रहा है, हैं? इससे ज्यादा बाबा ने खुद ही मैसेज दिया। इसका मतलब क्या कि हमारी ऊपर से वो हर चीज की रक्षा कर रहा है, हमें किस चीज की चिंता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हो और सब विघ्नों से और समस्याओं से बचे हुए हो। हमें तो पता भी नहीं कल हमारे पास क्या समस्या आने वाली, तो बाबा ऊपर से ध्यान रख रहा है। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज है? हमारे लिए सहज क्यों है। अब बाबा बताता है कि कैसे आपको ये प्राप्ति हुई, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। अब हमारा रहना सहना चलना फिरना संग साथ सब परिवर्तित हो गया, हमारे जीवन का लक्ष्य भी परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया। तो बाबा कहते परम धाम के रहने वाले हो, शांति के सागर की संतान हो, रोज मुरली में आता है, योग लगाते, तो उससे आपके अंदर नेचुरल परिवर्तन हो रहा, हर एक में परिवर्तन है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर लेते हो। बाबा के बच्चों के आगे कोई समस्या आएगी उसका भी सात्विक रूप देखेंगे, भाई बीमार हो गया कोई बात नहीं, कर्म भोग है ठीक हो जाएगा, दुनिया वालों को तो चिंता लग जाती है। तो बाबा कहते हैं माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान रूप बना देते हो। बाबा कहता नहीं कोई परीक्षा आएगी आपको पक्का कर देगी, आप कहते ठीक है अनुभव सीख लिया और आओ किसी ने आना है। चैंपियन क्या होता है, चैलेंज करता है ना, और किसी को आना वो भी आ जाओ। तो बाबा कहता है ये शक्ति बच्चों को मैंने शांति की शक्ति के द्वारा परिवर्तन शक्ति दी है। अच्छा, तो आप फिर कारण को निवारण में बदल देते हो। बाबा के बच्चे कारण नहीं सोचते, बाबा के साथ साथ शक्ति है, निवारण हो जाता है ना इतनी ताकत। कोर्स भी कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? बाबा कहता है एक बहुत कूड़े का ढेर है, उसमें आप गुलाब का बीज बो दो, वो क्या पैदा करेगा, खुशबूदार गुलाब, तो नेगेटिव को पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। मिर्ची का बीज मिर्ची पैदा करेगा, गन्ने का बीज। तो हम जब सतोगुणी संस्कार वाले हैं, शुद्ध संकल्प वाले हैं, हमारी तो खेती अच्छी होगी ना कर्म क्षेत्र में। इसलिए बाबा कहते हैं ये परिवर्तन शक्ति तुमको कहां से मिली, तो ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। बाप का जो बाबा रोज कहता है बाप का वर्षा, दुनिया को निधन के हैं उनको वर्षा मिलता ही नहीं, तुम विशेष हो, वो तो भटकते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। यहां तक नहीं, आगे चलो। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्म वर्षा मिला। तो हम क्या हैं, हमारा टाइटल क्या है, क्या टाइटल है, हाँ? आपका टाइटल क्या है, जो विषय चल रहा है सर्व शक्तियां परमात्म वर्षे में मिली हैं, तो टाइटल क्या हो गया, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर मैंने बच्चा, तो बच्चे को सर्व शक्तियां कहां से आई, बाप से। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना आप सब, हर रोज मुरली सुनते हो ना, जरा हाथ उठाओ। यहां तो सब रोज सुनने वाले। तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, और भी बातें कहते हैं कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। सार तो हर मुरली का यही होता है, रिवाइज करवाते हैं रोज कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, अब इसमें बाबा ने स्पष्ट क्या किया है कि बाप की याद भी सहज क्यों आती है, बाप की याद सहज क्यों आती है, दुनिया को कहो परमात्मा को याद करो, वो कहने लगे मैं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, परमात्मा परम धाम में रहने वाला है, वो निराकार दुनिया है, वहां ज्योति स्वरूप परमात्मा करके देखो कितनी देर कर सकते हो। तो बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आती है। इसलिए बाबा हमेशा अकेला नहीं कहता मेरे को याद करो। केवल बाप को याद करोगे तो कहाँ जाओगे? मुक्ति धाम में, है ना? क्योंकि बाप तो वहीं रहता है। और वर्षे को याद करोगे तो कहाँ जाओगे? सतयुग में। और वर्षा याद करने से लौकिक में भी होता है। लौकिक में किसी के दादाजी के पास बहुत जायदाद हो, गांव में रहते हो तो शहर से भी गांव में आके दादाजी के पांव दबाएगा, दादाजी को सेवा करेगा, मालूम है कि दादाजी से जायदाद मिलने वाली है। लौकिक में भी होता है। तो बाबा कहते हैं कि वर्षे जो वर्षा कौन सा? सर्वशक्तियों का, जिसके साथ सर्वशक्तिवान हो, माया से बचा के रखे, प्रोटेक्शन में रखे, हर काम सहज कर दे, तो उससे शक्ति लेने का तो लालच रहेगा ही ना कि बाबा और शक्ति दे और शक्ति दे। और रसूल क्या है? हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, अपने आप नहीं देगा, ऐसे तो सबको दे दे जो हिम्मत करेगा। तो इसलिए सहज याद का कारण है सहज प्राप्ति। हर एक बच्चे को ये रूहानी फख्र रहता है और दिल में गीत भी गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? ये दुनिया में जो पाने वाली चीज थी, पा लिया था, जो पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में ये गीत स्वतः ही बजता रहता, हमको गाना नहीं पड़ता, अंदर ही पता है कि बाबा मिला हुआ है। आ कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको तंग कर सके। फखुर है ना, जितना इस फखुर में रहेंगे तो फिक्र, फखुर की निशानी है बेफिक्र। फखुर और फिक्र, या तो आप फखुर में होंगे या फिक्र में होंगे। अगर आप फिक्र में हैं किसी तरह के तो फखुर कम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं फखुर की निशानी है बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, कईयों का मन में होता है, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फखुर नहीं है। बाप दादा ने तो बेफिक्र बादशाह बनाया। अगर बादशाह हो और उसको फिक्र भी हो तो उसको बादशाह कहेंगे? हाँ? मुसलमान लोग अपनी युगल को बेगम कहते हैं। तो बेगम का क्या मतलब होता है? जिसको कोई गम नहीं है, तुम आराम से रहो, बस मौज करो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको बेफिक्र बादशाह बनाता हूं। तुमको क्या फिक्र है? छोटे बच्चे को फिक्र होता है मुझे फीस देनी है, कहां से आएगी, मेरी किताबें कौन खरीदेगा? नहीं, जरा सी बात होती है तो पिताजी एटीएम है हिलाएगा, लाओ वो देखा। तो बाबा कहता लौकिक में भी ऐसा होता है, ये तो मैं परम पिता हूं। अब बेफिक्र बादशाह फिक्र हो गया काहे का? एक बादशाह था, वो सारा दिन घूमता रहा राजधानी में, थक गया, शिकार करने चला गया। रात को बहुत थका हुआ महल में आया और अपने वो जो होते हैं उनके दरबान, उसको बोला आज मैंने खाना नहीं खाना, कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसने कहा जहां पना हजूर, आपका सोने वाला महल है, जाके सो जाइए। अब राजा जब उसमें एंटर करने लगा तो दरबार ने कहा एक बात है, आज शाम को 4 बजे एक बहुत काला नाग इसमें घुस गया था और हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं। पर आप तो बादशाह हैं, हर चीज आपकी रैयत है, सांप आपको क्या कहेगा, आप जाइए सो जाइए। अब क्या होगा? राजा सोएगा, चाहे वो राजा ही हो, वो ढूंढता रहेगा सांप कहाँ है, सांप ना आ जाए, इधर उधर डर के बैठा रहेगा। तो बाबा कहते फिक्रमंद राजा भी हो गया तो काहे का? तो हमने आपको, बाबा कहता बिल्कुल बेफिक्र। क्या निश्चय, निश्चित और निश्चित। निश्चित मैंने होगा ही, विक्ट्री है, और निश्चित चिंता कहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बोलो बेफिक्र बादशाह हो। अब बाबा पूछ रहा है बोलो बेफिक्र बादशाह हो, तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बाबा ऊपर से देख रहा है कौन कौन बेफिक्र बादशाह है, हाथ उठाओ। आपके साथ कोई सो रहा उसको जरा झटका दे दो, हैं, बेचारा रह ना जाए। अच्छा, कौन बेफिक्र बादशाह है, हाथ उठाओ। कहते हैं कि तकदीर आती लोग सोए रह जाते हैं। अच्छा, अब बाबा पूछ रहे हैं बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। जिसको कभी कभी आ जाता है वो भी तेरा हाथ उठा दो। बाबा को उठा रहे हैं, मुझे नहीं उठा के बता रहे, वो आपका ठीक कर देगा। कभी कभी आ जाता, अभी हाथ उठा दोगे तो ठीक कर देगा। अच्छा अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? जब तुम्हें ही फिक्र नहीं तो हमें किस चीज की फिक्र है? अच्छा, फिर बाप दादा कुछ मदद कर रहे हैं। बाप दादा ने तो कह दिया है कि सब फिक्र या किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। अब इससे अच्छी ऑफर क्या हो सकती भाई? हैं, एक डब्बा बना के कहते हैं इसमें अपनी चिंता डाल लो। तो बाबा आपको खुली खुली छुट्टी दे रहे हैं, अगर किसी तरह का फिक्र है, मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, कई तरह के फिक्र होते हैं। अच्छा, किसी तो ये भी फिक्र होगा मैं कमरा खुला छोड़ रहा हूँ, मेरे पर्स का क्या होगा। अच्छा, मेरी टिकट बुक नहीं हुई रिटर्न की, कई तरह के फिक्र होते हैं। तो कोई भी प्रकार का फिक्र है, किसी भी प्रकार का कोई बोझ है तो बाप को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा, सागर में सब समा जाता। एक गांव का व्यक्ति था, वो रोज पैदल दूसरे गांव में जाता था। वहां ट्रेन चल पड़ी तो किसी ने कहा भाई अब तो ट्रेन चल पड़ी है, ट्रेन में बैठ जा, फटाफट पहुंच जाएगा। वो खुश हो गया, ट्रेन में बैठा, ट्रेन सचमुच चलने लगी, उसको पैदल नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके सिर पर जो गठड़ा था ना, उसने ट्रेन में भी सिर पर उठाए रखा है। अब बताओ, क्योंकि उसको ये नहीं बताया किसी ने कि ये भी तू नीचे रख दे। तब बाबा कहता, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, फिर कहते हैं ये तो मेरे कर्मों का हिसाब है ना, मैंने भोगना है ना, इसलिए सिर पे रखते हैं। तो बाबा कहते मेरे बच्चे काहे के बने फिर। इसलिए कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराते हैं। बाबा को सब म्यूजिक सुनता रहता आपका है, हर सेंटर उसका चैनल है। तो क्या सुनते हैं पता है कौन सा गीत? क्या करें कैसे करें, ऐसे गीत गाते हैं। जाएं तो जाएं कहां। अब बताओ, कभी कभी तो गाते हो ना ऐसा गीत। बाबा को यह भी पता, अब ना भी बोलोगे उसको पता अब क्या होगा। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं गीत सुनने के बाद उसका जवाब। अब सुनिए बाबा मदद कैसे करता है। बोझ कहता है दे दो, चिंता दे दो, अपना फिक्र दे दो। उसको ऐसे नहीं दे दिया तो पता ही नहीं लगे आपको कैसे ठीक हो गया। तो बाबा तरीका बता रहा है, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, अब सुनना, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो तो बहुत मजा आएगा। इलाज क्या है सारे बोझ का, सारी चिंता का? क्या इलाज है? कि साखी पने की सीट पर सेट होके अपसेट नहीं हो, खेल को देखो। अर्थात आपका रेलवे टिकट बुक नहीं हुआ, आपका पर्स खो गया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जब कहोगे मेरी है तो मेरा पर्स खोया है, मेरे को टिकट नहीं मिला। साखी का मतलब क्या होता है? न्यारे होके देखो, किसी और की टिकट खोई है, किसी और का पर्स गुम हुआ है। अर्थात मैं एक्टर हूं, एक्टर नाटक में एक्टिंग करता है, एक्टर का भी पर्स खो जाता है, एक्टर को भी टिकट नहीं मिलता, ऐसे ऐसे करता है, लेकिन उसको अंदर से पता रहता है, क्या मैं तो एक्टर हूं, ना तो मेरी कोई टिकट है ना कोई मेरा पर्स है, मुझे तो एक्टिंग मिली हुई है, ऐसे करना है। तो आप परम धाम अगले पिछले जन्म से आए थे तो टिकट लेके आए थे क्या? नहीं। आपके पास पर्स था क्या? नहीं। तो बाबा का मतलब यह है, बहुत अच्छा बाबा ने समझाया हुआ है, साखी होकर हर खेल को देखो। कोई मर गया तो बाबा कहता है अम्मा मरे हलवा खाओ, हाँ क्यों कहता है? मेरी अम्मा थोड़ी मरी है, एक्टर था उसकी अम्मा मर गई, बच्चा है, बाबा तूने दिया, मर गया तो बाबा क्यों लिया? तो इसलिए बाबा कहता है साखी पने की सीट आसन, जिसको कमल आसन भी कहते हैं, कमल के ऊपर असर नहीं होता, और आपका चार आपके अलंकारों में कमल है, इसलिए बाबा तरीका बता रहा है बोझ मुझे देने का, मैं बाबा जाने जो होगा ठीक है। साखी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो तो बहुत मजा आएगा। वाह। फिर बाबा ने एक और भी सीट बताई है, त्रिकालदर्शी स्थिति की सीट में सेट हो जाओ। त्रिकालदर्शी साथ जोड़ा है कि आपका पर्स पहली बार गुम नहीं हुआ, आपको टिकट पहली बार नहीं मिला, पिछले क्लब भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले क्लब भी ऐसा हुआ था ना, फिर उसके बाद कोई रिजल्ट हुआ होगा ना, पिछले क्लब में गुम हो गया था तो कुछ हुआ होगा, आज तो आप यहां बैठे हैं, पास हो गया नहीं, अब भी पास हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आपको दो दो हथियार मिले हुए हैं, साखीपन की सीट और त्रिकालदर्शी की भी स्थिति, सेट हो जाओ। सीट से नीचे आते हो इसलिए अपसेट होते हो, कोई सिपाही भी अपना चौक छोड़ के साइड में आके खड़ा हो जो उसका हाथ कोई नहीं मानेगा, कहे तो ऑफ ड्यूटी है। तो जो ही आप नीचे आए, बाबा कहते राजा अपने आसन पर बैठता है, हमारी स्थिति ही अपना आसन है, आप कमल आसन में बैठे रहो, मस्त रहो, अभी तो विनाश होना है, एक छोटा मोटा पर्स क्या चीज है, फिर क्या होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला, शरीर भी चेंज होने वाली चीज है, आत्मा का तो विनाश नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहता है ये प्रैक्टिकल टेस्ट करो, आप मस्त रहो, पहले भी हुआ था कोई बात नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा, एक्टर के साथ हो रहा है तो नाटक है, रोते क्यों? अच्छा कौन, अच्छा बाबा आगे बता रहे हैं बच्चों को, कौन सी तीन चीजें बच्चों को परेशान करती हैं, बाबा को यह भी पता है, आपको भी पता है ना, कौन सी तीन चीजें परेशान करती हैं? जिन चीजों की आत्मा बनी हुई है, आत्मा की जो तीन मेन फैकल्टीज हैं वो तीनों ही परेशान कर रही हैं तो आत्मा तो परेशान हो जाएगी, मन बुद्धि और संस्कार। अच्छा मन का क्या हाल है? चंचल मन, अचल रह ही नहीं सकता, भटकती हुई बुद्धि। चंचल मन का क्या मतलब होता है? चंचल मन का मतलब क्या होता है? ये मन टिकता नहीं, आप एक काम कर रहे हैं, अचानक दूसरे का ध्यान आया, उसको छोड़ के दूसरा शुरू कर देंगे, बीच में तीसरे का ध्यान, ये नहीं कि इसको पूरा कर ले, वो कहीं भाग नहीं रहा, फिर करना। मन का स्वभाव ऐसा चंचल हो जाता है, टिकता नहीं, फिर क्या होता? सतयुग में मन बिल्कुल चंचल नहीं होता, ऐसे नहीं कि ऐसे टिका रहता है, जिस तरफ जाना होता उतना ही जाता है, ना इधर ना उधर, लेकिन उसका अभ्यास होता है संगम पर। और संगम पर अभ्यास क्या होता है कि ब्राह्मण आत्मा मन का ऐसा अभ्यास करे कि मन को जहां ले जाना चाहे वहां ले जा सके, जितना समय वहां रखना चाहे वहां रख सके, और वापस लाना चाहे तो ला सके। यह है मन का कंट्रोल जो आपको सतयुग में ले जाएगा, क्योंकि वहां कोई चीज जरा भी इधर उधर नहीं होती। आपकी आंख को जो देखना वही देखेगी, जितना देखना उतना ही देखेगी, न कम न ज्यादा। आंख के पीछे मन है, इसलिए मन को जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ, जितना समय वहां रखना चाहो वहां रखो, और जब वापस लाना चाहो तो ला सको। इसी को बाबा अशरीरी बनने का अभ्यास कहता है। शरीर आपका यहां पड़ा है, आप अपने मन को कहो इस टेबल पे आके बैठ जाओ, इस सोफे पे बैठ जाए, जितनी देर बिठाना चाहो बैठे, फिर कहो वापस आ जा आ सके। और इसके लिए बाबा ने एक्सरसाइज बताई है कि बहुत चंचल मन है, इधर उधर भागता है, तो इसलिए उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए बाबा ने एक्सरसाइज बताई है ना, कई प्रकार की। क्या पहले हम परम धाम में थे कि नहीं थे? थोड़ी देर वहां की सैर कर लो। सतयुग में आप परम धाम नहीं जा सकते, कलयुग में आप परम धाम नहीं जा सकते। परम धाम में जाकर भी आपको पता नहीं होगा हम परम धाम में पड़े हैं, आपके साथ कौन आत्मा है पता नहीं। सिर्फ संगम पर आपको परम धाम का पता है, कितनी मौज है, त्रिकालदर्शी है। तो परम धाम में जाओ, थोड़ी देर जितनी देर टिकना है। पहले तो सारे धामों को फटाफट भी नंबर लगा लोगे, कोई हर्जा नहीं। परम धाम के बाद आत्मा कहां जाती है? कहां जाती है परम धाम के बाद आपकी आत्मा? कहां जाएगी? सतयुग में। ठीक है, तो थोड़ा याद करो हम सतयुग में गए थे, और सतयुग के सीन इतने बढ़िया हैं कि चेहरे ऊपर के ऊपर जितने भी लकीरें होंगी गायब हो जाएंगे। अरे वाह, सतयुग फोटो देख के दिल खुश होता है। वीआईपी को कहो फोटो खिंचाना, कहेगा सतयुग के आगे खिंचाना है, भाई कलयुग के आगे खिंचवा ले, नहीं खिंचवाना। अच्छा, अब सतयुग हो गया। सतयुग भी बड़ा लंबा चौड़ा है, त्रेता है, आधा हिस्सा है। फिर बाबा कहते और बातें छोड़ दो बीच की, सीधे संगम पर आ जाओ। क्या मौज है संगम पर, चढ़ती कला का युग है, भगवान साथ है, 10 खून माफ है आपको। भगवान संगम पे क्या होता है, किसी का राजा का बेटा हो कुछ भी कर लेता है। तो बाबा कहते इतनी शक्ति है आपके पास। अच्छा, फिर फरिश्ता बनना है। सपना तो सब जानते हैं ना कैसे आता है, तो सपने में भी घूमते हैं, यहाँ शरीर में रहकर घूम लो, जरा फरिश्ता बनना क्या मुश्किल है। जो काम करना है फरिश्ता बन के करोगे तो फटाफट हो जाएगा। आप बैठे उठने में तकलीफ है, कहो मैं फरिश्ता हूं, फटाफट उठ जाओगे। अच्छा, फिर परम धाम में चले जाओ। इस तरह का बाबा कहता है अभ्यास करने से मन थोड़ा काबू होगा। फिर ये जो बात है कि जहां लगाना चाहो, सब समझते हैं मैं जहां ले जाना चाहो मन चले जाता है। चले तो जाता है, वापस आता है? रात को सोने के समय नींद नहीं आती, सुबह उठने के समय आंख नहीं खुलती, तो फायदा क्या हुआ? फिर शरीर भी छोड़ेंगे तो तकलीफ से छोड़ेंगे, तो सतयुग में तो पता भी नहीं लगता। तो यहां अभ्यास करना है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि, है ना। एक को एक लक्ष्य मिल गया वो ठीक है, बुद्धि को खाम खाम में आदत है भटकने की, भटकाए बगैर चैन नहीं आएगी। वैसे कहेंगे हमें शांति चाहिए, आप शांति में बैठा दो, 3 मिनट बाद हिलने लग जाएंगे, शांति में अशांत हो जाते हैं। अशांति में शांत रहते हैं। अब देखो कोई फंक्शन करो, खाली चुप रह जाओ, बच्चे शोर करने लग जाएंगे, इधर उधर कोई बोलता क्यों नहीं। चाहिए शांति, बोलने शुरू करो कि शांत हो जाएंगे, तो उल्टा है। इसलिए बाबा तीसरी बात जो है, जो इसका आधार है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया। तीसरी बात है पुराने संस्कार। अब जब हमने कह दिए पुराने, तो फिर बड़ा मुश्किल है, पुरानी आदत तो मुश्किल से छूटती है ना। और आज की सारी दुनिया यही गड़बड़ कर रही है कि पुराने को नया बनाने की कोशिश कर रही है। किसी बूढ़े आदमी को कहो अगले साल तू जवान हो जाएगा, हो सकता है? हो सकता है? अब मेरा 84वां बर्थडे था, कोई कहे 85 में मैं तू बच्चा जवान हो जाएगा, हो सकता? नहीं हो सकता। तो सारी दुनिया के लोग यही गड़बड़ कर रहे हैं, पुराने को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा कहता पुराना तो ठीक हो ही नहीं सकता, पुराने ने तो और पुराना होना। हाँ ठीक हो सकता है अगर आप आगे की तरफ देखो, टाइम आगे को भागता है, पीछे नहीं जाता। इसलिए बाबा कहता पिछली बातें याद ना करो। अब मैंने बच्चा बनना है तो क्या तरीका है, क्या तरीका है? ये शरीर छोड़ दूं, बच्चा बन जाऊंगा कि नहीं? तो गुलजार दादी जी ने जो कहा कि हमारे ये भिन्न भिन्न मिलन इसीलिए होते हैं कि हमारी स्मृति में जो चीज होती है उसको दोबारा रिवाइज करने का मौका मिलता है। तो ये जो पुराने संस्कार वाली बात है, ये बाबा ने हमें मुरलियों में सुनाई हुई है, लेकिन बाबा फिर क्यों सुनाते हैं कि हमको उसका प्रयोग में आ जाए। तो इसलिए बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। अब देखिए बाबा हंस रहे हैं ऊपर से, कौन सी बात सुनकर हंसी आती है पता है कौन सी बात? तो बाबा बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार हैं। पर पुराने संस्कार है ना, तो बाप दादा मुस्कुराता है। जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा उसको बना लिया ना, तो मेरे पर तो अधिकार हो जाता है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। आप किसी जानवर को भी प्यार करना शुरू कर दें, आपके पास आके बैठ जाएगा, क्योंकि मेरा हो गया। तो बाबा कहते पहली गलती तो ये मेरा कहना। कोई सांप आपके पास आके आ जाए तो आप कहेंगे मेरा सांप जेब में रख लो। कोई बिच्छू आपके यहां लग जाए, आप कहेंगे मेरा बिच्छू, इसको मैं और जेब में रख लूं, या उसको पटकेंगे। तो अगर पुराने हैं, समझते भी हैं, तो मेरे क्यों कहते हो? पुराने तो पराए हैं ना, पर धर्म दुख देता है। इसलिए मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, है ही नहीं मेरे। जब आप ब्राह्मण बन गए, नया जन्म मिल गया, नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, तो पुरानी चीज आपकी कैसे हो सकती है? किसी ने किसी गरीब का बच्चा गोद में ले लिया, अब उसको नए पिताजी की, नए घर की, नई बातें में चलना है या पुराने में चलना है? तो नए घर में आके, महल में आके वो कह जी मैं तो धरती पर सोऊंगा, वो कहेंगे भी तू तो महल में आ गया। अगर 10-12 दिन जिद करता रहा धरती पर सोऊंगा, उसको छोड़े आएंगे वापस। कन्याओं के साथ तो आम तौर पे होता है, जब उनकी शादी हो जाती है तो कई कन्याएं तो ससुराल में एडजस्ट कर लेती हैं, क्योंकि माता पिता कह के भेजते हैं अब दोबारा इस दलील पर नहीं आना, तो डरती हैं वही है। और कई को बड़े घर की होती हैं तो वहां बोलती रहती हैं मेरे घर में तो ऐसा था, मेरे घर में तो ऐसा था, तो ससुराल वाले उसको और टाइट करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं। हम मर जीवा हो गए तो पुराने वाले के हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं। अब बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया है, क्रोध कौन से जीवन का संस्कार है, देवता का है या ब्राह्मण का है या असुर का है, पिछले जन्म का है। अभिमान किस जीवन का संस्कार है, पुराने का है। सारे विकार पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो ये शूद्र जीवन के संस्कार हैं जिसको आप पुराने कहते हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं कि ठीक है मेरा कह रहा है क्रोध, कहेगा मैं बैठा हूं आपके घर में जम के, मेरा है। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार तो जानते हो ना, और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह असल में भी पुराने नहीं है। कितने हजार वर्ष का कल्प है, कितने हजार वर्ष का कल्प है, और ये संस्कार कितने हजार वर्ष पुराने हैं, तो पुराने तो नहीं हुए ना। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना संस्कार बाबा स्मृति दिला रहा है, इसलिए बाबा बीच में मुरली चलाते हैं और गुलजार दादी कह रही है कि बीच में ये संगठन आपको आगे बढ़ाते हैं। आप आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना संस्कार आदि और अनादि संस्कार है, उसका नाम ही है आदि और अनादि। आदि संस्कार होते हैं देवताओं के और अनादि संस्कार होते हैं आत्माओं के, क्योंकि आत्मा अनादि है, परम धाम में रहती है। और जब हम देवता रूप में आते हैं तो आदि हैं सतयुग के संस्कार, इसको आदि अनादि कहा जाता है। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं, ये जिसको हम कहते हैं मेरे पुराने। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बीच में कोई चीज उठी है, जैसे कोई रोग आ गया तो रोग शुरू में थोड़ी होता, आता है तो डॉक्टर की मदद से उसको समाप्त कर देते हैं। तो बाबा कहता है मध्य में आए हैं, बाबा की मदद लेके समाप्त कर दो। परंतु होता क्या है, अब सुनिए, समझ में तो आ गया कि बाप साथ है, उसकी मदद है, ये द्वापर के संस्कार है, इसको खत्म कर दो। अब बाबा को ये भी पता है क्या होता है, होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान के सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है कि समय पर सहयोगी बने, लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान शक्तिशाली बन गए। क्रोध आया, फिर बाबा की मदद से उसको भस्म कर दो, नहीं मुझे क्रोध आया है तो अपनी शक्ति से कोशिश करते हैं, अगर तुम्हारे में शक्ति होती तो आता ही क्यों, तो ये भी नहीं मानते मैं कमजोर आत्मा हूं, बहुत समय से आता रहा है और भी कमजोर हो गई हूं, मैं अपनी शक्ति से उसको कैसे जीत सकती हूं जिससे मैं हारा हुआ हूं। तो बाबा कहते हैं मेरी शक्ति लो, और मेरी शक्ति से वो वाले धारण करो, ये वाले खत्म करो। पर फिर क्या करते हैं, दोनों तरह के रखते हैं। ब्राह्मणों को तनाव क्यों होता है, आपको पता है सारे ब्राह्मण विशेष हैं, तो उनको कोई साधारण चीज तो तंग कर नहीं सकती, तो ब्राह्मणों का तनाव भी विशेष तनाव होता है। आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों का तनाव विशेष है और उसको विशेष तरीके के बगैर आप खत्म नहीं कर सकते। आप सभी ब्राह्मण मुरली सुनते हो, वर्षों से सुनते आ रहे हो, आपको तनाव होता है, हाथ उठवाएं या दिल में रखेंगे होता है? अच्छा ठीक है, दिल में रखें, क्योंकि हाथ उठवाना तो बाबा का अधिकार है। आप देखिए कि आपने किसी ट्रेन में चढ़ना है, ट्रेन से सवारियां उतर भी रही हैं और आपको चढ़ना भी है, तो अगर आप जाके सीधा गेट पर खड़े हो जाओ ट्रेन के, मुझे चढ़ने दो, वो सवारियां कह रहे हैं भाई पहले हमें उतर जाने दो, अंदर जगह तो होनी चाहिए, नहीं मैं तो चढ़ूंगा, तो क्या होगा? ना आप चढ़ सकेंगे ना वो उतर सकेंगे। आजकल लोगों ने सीख लिया है, थोड़ी देर खड़े रहते हैं भाई पहले उतर तो जाओ। अब हम क्या करते हैं, मुरली में आया कि ईर्ष्या द्वेष घृणा खराब चीजें इसको निकालो, तो हम क्या करते हैं अंदर से संकल्प करते हैं निकल। अच्छा फिर अगले सेंटेंस में आता है तुमको सहनशीलता संतोष समाने की शक्ति धारण करना है, चलो अंदर। अच्छा अब वो कहते हैं निकल उधर, कहते हैं अंदर जा, गेट पे अड़ जाते हैं। अब ना वो निकल पाते हैं ना वो जा पाते हैं, हो गई प्रॉब्लम। ये ब्राह्मण को तनाव है कि मेरी बुद्धि मान तो रही है इसको निकालना चाहिए, बाबा कह रहा है, ये भी मेरी बुद्धि मान रही है कि इसको धारण करना चाहिए, बाबा कहता है, तो हम क्या करते फिर जोर लगाते हैं। क्षत्रिय हमेशा जोर लगाता है, मेहनत करता है, वो फंस जाते हैं। इसलिए पहले दशहरा आता है फिर दिवाली आती है, पहले जगह खाली करो फिर तो आएंगे। इसलिए ये जो बाबा कह रहा है, बाप जो सदा आपका कंबाइंड साथी है और उससे कंबाइंड का सहयोग नहीं लेते, कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान हो जाते। अच्छा आगे चलिए, बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं और अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं प्यार के कारण ही सभी यहां पहुंचे हैं। हैं आपको किसने कहा यहां जाओ? हैं परमिशन लेकर, कोटा लेकर, टीचर से परमिशन लेकर, आबू से लेकर आते हैं कि नहीं आते? अपने घर जैसा तो आराम नहीं है यहां, भीड़ भाड़ भी है, खाना भी आगे पीछे है, आते हैं कि नहीं आते, क्यों आते हैं? तो बाबा कहते हैं बाप जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्म प्यार के आकर्षण से अपने घर में आ गए। ये किसका घर है, ये किसका घर है? हैं हम कहते हैं भगवान का घर है, पर भगवान को तो यहाँ खाने पीने रहने की अकोमोडेशन की जरूरत नहीं है, उसके बच्चों का घर है क्योंकि वो तो ऊपर है आराम से। इसलिए बाबा कहता है कि भगवान के प्यार के कारण आ गए। बाप दादा भी जानते हैं कि प्यार में मेजॉरिटी बच्चे पास है, क्योंकि ज्यादातर सारे बच्चे तो प्यार के कारण ही आते हैं ना, कोई कोई आता है जेब काटने भी आ जाता है, चलो पर्स चोरी कर लूंगा, ऐसे भी होते हैं, पर बाबा इसलिए मेजॉरिटी कह रहा है, उसको ये भी पता है कि ऐसे भी हैं। तो विदेश से भी प्यार के प्लेन में पहुंच गए, बाबा कहता है इस प्लेन में नहीं पहुंचे, प्यार था इसलिए प्यार के प्लेन में बिना भीड़ होते भी पहुंच गए, और जिनको प्यार नहीं था वो वहीं बैठे हैं, टीवी पर देख लेंगे, मुरली पढ़ लेंगे। बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहां पहुंच गए हो ना? बोलो जी, हैं हाथ ही उठा दो, चलो। अच्छा बाबा जी देख लीजिए पहुंच गए, ये परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है, इसलिए भगवान को दिलाराम कहते हैं। आपको थकावट महसूस होती है यहां? नहीं। अच्छा जो पहली बार पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ, हाथ हलाओ, फिर बाबा का हाथ उठाओ हाथ हिलाओ ताकि बाबा देखे। फिर बाबा कह रहा भले पधारे, वेलकम, भले पधारे की इंग्लिश होती वेलकम, आपका बाबा स्वागत कर रहा है। अच्छा, फिर बाबा शिक्षा दे रहे हैं। अभी समय की समीपता के प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। बाबा कहते वरदान आपको मेहनत के बगैर मिलता है। आपको पता हर मुरली में जो वरदान आता है या किसी आत्मा को बाबा वरदान देता है, अमर भव, स्नेही भव, वो बिना मेहनत के मिलता है। उसका अर्थ क्या होता है? आप बाप से कोई भी संबंध जोड़ोगे आपको कुछ करना पड़ेगा। पिता बनाओगे तो क्या होगा? पिता के फरमादार बच्चे बनना पड़ेगा कि नहीं बनेगा? टीचर बनाओगे तो क्या होगा? टीचर की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सतगुरु बनाओ तो उसको फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई भी संबंध जोड़ोगे तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। हाफ पार्टनर बनाओ तो आपको ड्यूटी उसकी करनी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन एक ऐसा संबंध है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाप को ही करना पड़ेगा, और वो है वरदाता। हे भगवान, मुझे ये वर दे दे, आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना। और इस वरदाता को कईयों ने मिसयूज भी किया है। आपको पता है भस्मासुर ने क्या किया था? कि शिव जी तो वर दे देते हैं, चलो ले लो। उन्होंने कहा तथा अस्तु, किसी भी चीज को हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए, आपके लिए भस्म चाहिए, तथा अस्तु। अब उनके पीछे लग गया वर देने, हुआ क्या, आखिर मर गया। इसलिए भगवान कहता है कि वरदान में आपको कुछ नहीं करना, केवल वरदान को यूज करना। अगर आपने वरदान को यूज नहीं किया तो जैसे किसी जेवर को लॉकर में रखा हुआ, नकली पहन के घूम रहे हैं। इसलिए अब बाबा उस बात पे जोर दे रहा है। अभी समय की समीपता के प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अब बाबा ने ऊपर कितना कुछ बताया, अब विशेष आत्मा हो, आपको ज्ञान है तीनों कालों का, तीनों लोकों का, साखी की सीट का, सब है, पर काम में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने को अशरीरी बनने की, फरिश्ता रूप बनने की एक्सरसाइज कराते रहो। क्योंकि अनुभव करेंगे हम मैं फरिश्ता हूं यहां, तब जाके आप फरिश्ता की दुनिया में जाओगे ना, या अचानक कोई डेट आएगी आप फरिश्ता बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज है। किसी बीके को कहो तुम आत्मा ने शरीर हो, वो मानेगा? सोते हुए को भी कहो तुम आत्मा ने शरीर हो, वो मानेगा? नहीं, क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है कि मैं आत्मा हूं। इसी प्रकार से हर जो बाबा के वरदान है उसको अनुभव में लाओ। अब बाबा ने बताया है जब चाहो अपने को अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी एक मिनट दो मिनट निकाल कर अभ्यास करो। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है ये भी बाबा ने मदद के लिए किया हुआ है। अचानक शरीर छूट जाए तो आपकी अवस्था क्या होगी, कि इसका भी ढीलापन कर देते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, चल बात पूरी कर लें। नहीं, ये अभ्यास है, लेकिन अपने आप करना ईजी है। कंट्रोल से कोई भी चीज करते हैं तो अनमने से करते हैं। अब खाना खा रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल आ गया, आप क्वेश्चन दिया कि मुंह में डालें या रखे रखें, हैं? जब कोई दूसरे बैठे होते हो तो रखे रखते हैं, अकेले होते हैं तो खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चलाकी नहीं करो, आपको अपने नेचुरल अभ्यास करना है। ट्रैफिक कंट्रोल तो एक्स्ट्रा है। अच्छा, चेक करो जो संकल्प किया वही स्वरूप का अनुभव किया, अर्थात मन को जहां ले जाने का वहां ले गए। अच्छा, अब आ गया मुरली का क्या यादगार। चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तखत नशीन, भ्रुकुटी के तखत नशीन, क्योंकि भ्रुकुटी के तखत नशीन होंगे तभी दिल तखत नशीन होंगे, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो ये हो गई आज की मुरली, और आपने इसके ऊपर जो भी सुना है प्रैक्टिस करना है। ओम शांति।